समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नौ दिन तक चलने वाला शारदीय नवरात्र का पर्व देश भर में धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में देवी भगवती के मंदिरों में पूजन अर्चन कर रहे हैं।
Well, yes, Navratri holds immense significance and for nine long days with the motive to show gratitude and seek blessings of Maa Durga. Well, it is being celebrated with great grandeur and enthusiasm across the whole country.
श्रोताओं, आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस ओजपूर्ण प्रभात में मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार बल और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। वेल, दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे एंड फर्स्ट लिसनर्स विल गिव यू लेटेस्ट नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल न्यूज। विल प्रोवाइड यू मेट्रो सिटी अपडेट्स, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद एंड ऑल्सो सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू टूडे एंड टूडे इट्स 25th ऑफ सेप्टेम्बर। वील स्टार्ट विद द हेडलाइंस फर्स्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और राजस्थान का दौरा करेंगे। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे।
प्रदर्शनी में राज्य की विविध शिल्पकलाओं, आधुनिक उद्योगों, सशक्त MSME और उभरते उद्यमियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें हस्तशिल्प, वस्त्र, चमड़ा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और आयुष आदि प्रमुख क्षेत्र भी शामिल हैं। इसमें उत्तर प्रदेश की समृद्ध कला, संस्कृति और व्यंजनों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। ये व्यापार प्रदर्शनी 29 सितम्बर तक चलेगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
बाद में प्रधानमंत्री राजस्थान का दौरा करेंगे और 1,22,100 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे बांसवाड़ा में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना के तहत उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ 700 मेगावाट क्षमता के 4 स्वदेशी दबाव युक्त भारी पानी रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। यह राजस्थान की दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना है जिससे प्रदेश में बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यह देश में सस्ती, विश्वसनीय और टिकाऊ बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में मजबूत कदम साबित होगा। श्री मोदी आज हरित ऊर्जा से जुड़ी कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार।
Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the World Food India 2025 at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. The four-day event will showcase India's strengths in the food processing sector, food sustainability and the production of nutritious and organic food. Our correspondent reports that the event will showcase India's transformative journey in food processing while fostering international collaborations and investment opportunities.
The mega global food event will witness participation from more than 21 countries, 21 states and union territories and 10 central ministries, making it the largest congregation of stakeholders in Indian food processing sector. The credit link support of over 770 crore rupees will be provided to around 26,000 beneficiaries for micro projects in food processing sector under the Pradhan Mantri formalization of micro food processing enterprises scheme. Several sessions including CEO roundtables, technical sessions, exhibitions and multiple business interactions will be held during the event. 14 pavilions, each dedicated to specific themes, have been set up, which is expected to attract around 1 lakh visitors. With Rahisuddin Rihan, Soumya Sharan, Akashwani News, Delhi.
Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved the third phase of the centrally sponsored scheme to add 5,023 MBBS seats and 5,000 PG seats in existing government medical colleges and institutes at a cost of 15,034 crore rupees over the next 3 years. This initiative will significantly augment undergraduate medical capacity, increase the availability of specialist doctors by creating additional postgraduate seats and enable the introduction of new specialties across government medical institutions. This will strengthen the overall availability of doctors in the country. The total financial implications of these two schemes is over 15,034 crore rupees for a period from 2025-26 to 2028-29. Out of 15,034 crore rupees, the central share is 10,303 crore rupees and the state share is 4,731 crore rupees. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has announced the tentative date sheets for the Class 10 and 12 board examinations to be held next year. It said that the examinations are scheduled to be conducted between 17th February and 15th of July next year. The CBSE, in a statement, said that these dates are tentative and that final date sheets will be issued upon submission of the final list of candidates by the schools. Nearly 45 lakh students, they are expected to appear in 204 subjects across India and 26 countries abroad. This is the first time that board exams for class 10 will be conducted twice in an academic session.
गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार सोनम वांगचुक की छठी अनुसूची और लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग पर लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है। मंत्रालय ने कहा कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति और उप समिति के औपचारिक माध्यम से कई बैठकें आयोजित की गईं, साथ ही नेताओं के साथ कई अनौपचारिक बैठकों के माध्यम से उनके साथ बैठकें हुई। मंत्रालय ने कहा कि इस संवाद प्रक्रिया से अभूतपूर्व परिणाम सामने आए हैं। लद्दाख की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को 45% से बढ़ाकर 84% कर दिया गया है। परिषदों में एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षण भी प्रदान किया है। इसके अलावा भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इस प्रक्रिया के साथ 1800 पदों पर भर्ती भी शुरू हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अगली बैठक अगले महीने की 6 तारीख को निर्धारित की गई है और साथ ही आज और कल लद्दाख के नेताओं के साथ बैठकें भी निर्धारित हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि राजनीति से प्रेरित कुछ लोग जो उच्चाधिकार प्राप्त समिति के तहत हुई प्रगति से खुश नहीं हैं, वो इस वार्ता प्रक्रिया को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि जिन मांगों को लेकर श्री वांगचुक भूख हड़ताल पर थे, वे उच्चाधिकार प्राप्त समिति में चर्चा का अभिन्न अंग हैं। मंत्रालय ने आगे कहा कि सरकार पर्याप्त संवैधानिक सुरक्षा उपाय प्रदान करके लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्ध है। मंत्रालय ने लोगों से मीडिया और सोशल मीडिया पर पुराने और भड़काऊ वीडियो प्रसारित न करने का भी अनुरोध किया। इस बीच छठी अनुसूची और लद्दाख के लिए राज्य के दर्जे की मांग को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद लेह में प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने हिंसक घटनाओं की कड़ी निंदा की है और शांति की अपील की है।
Moving on now to the world of sports. Well, in cricket, India stormed into the final of Asia Cup 2025, beating Bangladesh by 41 runs in the Super Fours at Dubai International Cricket Stadium. Well, we have more from the sports desk.
India continues to maintain their dominance as they once again reached into the finals of Asia Cup. After being invited to bat first, India scored 168 for 6 in 20 overs, with Abhishek Sharma's 75 of just 37 balls and Hardik Pandya's 38 run innings in the slog overs. In response, Saif Hasan's 69 runs went in vain as Indian bowlers dominated the Bangladesh lineup. Abhishek Sharma was adjudged player of the match for his fiery innings. Today, Bangladesh will lock horns with Pakistan to decide the next finalist after India. Continuing with updates from cricket, the International Cricket Council ICC has suspended the membership status of USA Cricket. The decision was taken after USA Cricket's repeated and continued breaches of its obligations as a ICC member under its constitution. These include the failure to implement a functional governance structure and lack of progress toward achieving national governing body status with the United States Olympic and Paralympic Committee. Last we have from futsal, where India recorded their first ever international victory as they overpowered Mongolia 3-0 in the last Group A clash of the AFC Futsal Asian Cup 2026 qualifiers at RDR last evening. Chirag Jha, Sports Desk.
तो श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले भाग में अब रुक करते हैं महानगरों के समाचारों का। सबसे पहले बात दिल्ली के समाचारों की। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने कल दिल्ली नगर निगम के 310 सफाई कर्मचारियों को नियमितीकरण पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि नियमितीकरण से कर्मियों को न केवल स्थिरता मिलेगी बल्कि उनके परिवारों को भी सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और सम्मानजनक जीवन का भरोसा मिलेगा। वहीं महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा कि नियमितीकरण से सफाई कर्मचारियों के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में चरणबद्ध ढंग से अस्थायी सफाई कर्मचारियों को स्थायी बनाया जाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल सेवा पखवाड़े के अंतर्गत पीरागढ़ी स्थित डीटीसी बस डिपो पर स्विचिंग सब स्टेशन और ईवी चार्जिंग स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि इन सब स्टेशनों में प्रतिदिन 1000 से अधिक ईवी बसों को चार्ज करने की क्षमता होगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इससे दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और अधिक ऊर्जा कुशल बनेगी तथा प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल बाहरी दिल्ली स्थित हिरणकूदना गांव के सीएम श्री स्कूल में विकसित नए खेल परिसर का उद्घाटन भी किया। ये खेल परिसर उभरते खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए तैयार किया गया है। ये खेल परिसर न केवल खेल कौशल को बढ़ावा देगा बल्कि सरकारी स्कूलों में विश्व स्तरीय शिक्षा और बेहतर सुविधाओं को भी प्रोत्साहित करेगा। इस महीने की 17 सितंबर से शुरू हुए पोषण महाअभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल बाहरी दिल्ली स्थित मुंडका गांव में एक विशेष कार्यक्रम में 17,834 पोषण किट के वितरण की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का आयोजन सांसद योगेंद्र चंदोलिया के साथ एनी फाउंडेशन के सहयोग से किया गया। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये किट बच्चों में पौष्टिक आहार सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करेगी। श्रोताओं, रुख करते हैं मुंबई के समाचारों का।
जी,
अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ ने मुंबई में एक सम्मेलन आयोजित किया। इसका शीर्षक है, भारत के प्लास्टिक तैयार उत्पादों के निर्यात को 3 वर्षों में 5 गुना बढ़ाएं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश व्यापार के अतिरिक्त महानिदेशक आरके मिश्रा ने कहा कि भारत का प्लास्टिक उद्योग 3 वर्षों के भीतर तैयार उत्पादों के निर्यात को 4 गुना करने का लक्ष्य रखता है। कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, निर्यातकों और वैश्विक हितधारकों ने भारत को एक वैश्विक प्लास्टिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की रणनीतियों पर चर्चा की। इसके अलावा मुंबई विश्वविद्यालय 26 नवंबर को अपने विद्यानगरी परिसर में पाम ऑयल के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी पहलुओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करेगा। अमरीका, मलेशिया और भारत के विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन भारतीय तेल प्रौद्योगिकी संघ द्वारा मलेशियाई पाम ऑयल काउंसिल, मुंबई विश्वविद्यालय और रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है। संगोष्ठी में पाम ऑयल के स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों के बारे में गलत धारणाओं पर चर्चा की जाएगी। ये कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा और इसमें प्रवेश निःशुल्क रहेगा। हालांकि सीमित सीटों के कारण otaiwz@gmail.com के माध्यम से पंजीकरण कराना आवश्यक है। और छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराजोत्सव अभियान के अंतर्गत मुंबई शहर जिला कलेक्टर कार्यालय ने प्रेरणा स्वयंसेवी संस्था के सहयोग से पश्चिम खेतवाड़ी म्युनिसिपल स्कूल 5th लेन ग्रांट रोड कमाठीपुरा में वंचित महिलाओं और उनके बच्चों के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया। शिविर में आधार पंजीकरण, सेतु केंद्र के माध्यम से विभिन्न प्रमाण पत्र, राशन कार्ड पंजीकरण, मतदाता पंजीकरण, स्वास्थ्य जांच केंद्र, संजय गांधी निराधार योजना और श्रमिक कल्याण योजनाओं जैसी सेवाएं प्रदान की गईं। इस अवसर पर मुंबई शहर जिलाधिकारी महिलाओं से विभिन्न सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने का उन्होंने आग्रह किया। और अब बात कलकत्ता के समाचारों की। गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह गुरुवार शाम को कोलकाता पहुंचेंगे। शुक्रवार सुबह वे कोलकाता के संतोष मित्रा स्क्वायर में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद गृहमंत्री साल्ट लेक स्थित पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित दुर्गा पूजा कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्रोताओं, अब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचार शगुन से।
यस मुकेश, एंड आई विल फोकस फर्स्ट ऑन चेन्नई।
जी,
The National Council for Vocational Education and Training under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship in collaboration with the Tamil Nadu Skill Development Corporation organized a workshop. This is Capacity Building and Awareness Workshop for Southern States and Union Territories. This happened in Chennai yesterday. The workshop, it brought together key stakeholders from Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Puducherry and Lakshadweep, including senior government officials, industry leaders, academia and also skilling organizations to deliberate on strengthening the vocational education and training ecosystem. And the focus, it was on quality assurance, convergence of efforts and the integration of future-ready skills in the skilling landscape. A special video message, it was also delivered by Minister of State for the Ministry of Education, Jayant Singh. Tamil Nadu Energy Secretary, Bila Venkatesan, passed away in Chennai yesterday. The 56-year-old bureaucrat was taking treatment for a brain tumour at a private hospital in Chennai, and a 1997 batch IAS officer, well, she held key posts in the state government, and she served also as the health secretary during COVID-19 pandemic. Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin expressed deep shock and grief over her demise, and in his condolence message, he recalled her career as a doctor turned administrator and then also described her as an experienced officer who handled challenging responsibilities with commitment. Now, we'll focus on Bengaluru. The Karnataka High Court yesterday rejected ex-corp petition that challenged Government of India's authority to issue information blocking orders. The court adjudged that social media must be regulated and ruled that social media content must be controlled, especially those against women. It rejected the argument presented by ex-corp that the government officials lack the power to issue orders under the concerned sections of IT Act. Now, we are heading to Hyderabad. Telangana government's initiative for women entrepreneurs, WE Hub, has rolled out the first cohort of the Raising and Accelerating MSME Performance, which is RAMP Women Acceleration Program in Hyderabad. The effort is a World Bank assisted initiative supported by the Ministry of MSME, Union Ministry of MSME. The cohort comprises 45 women-led micro, small and medium enterprises from 13 districts of Telangana. They were selected through extensive outreach boot camps in districts. And over the next 2 years, till March 2027, the selected enterprises, they will receive comprehensive acceleration support to expand their businesses and enhance their market presence and revenue. So these were the updates, our Metro City updates.
आज सवेरे में अब वक्त है महानगरों के मौसम का हाल जानने का।
जी।
इधर राजधानी दिल्ली में आज मौसम साफ रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। उधर मुंबई में बादल छाए रहेंगे तथा मध्यम वर्षा होने की संभावना है। आज का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और कोलकाता में आज गरज के साथ बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। श्रोताओं, अब हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु के मौसम का हाल सुना रही हैं शगुन।
मुकेश, आई विल बिगिन विद चेन्नई।
जी।
इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन। मिनिमम टेम्परेचर वाज 26 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 35 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद मॉडरेट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 20 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम इट विल बी अराउंड 27 डिग्रीज। Hyderabad, it is also expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain. The temperature will hover between minimum of 23 degrees and maximum of 29 degrees Celsius. Now, listeners, let's talk about what's special today.
Gee.
Well, today, World Pharmacists Day, it is being observed globally. The day, it is organized by the International Pharmaceutical Federation, a WHO partner, to recognize and also to celebrate the crucial role that, obviously, the pharmacists that they play in building healthy communities everywhere. So the theme for this year, it is Think Health, Think Pharmacist, which means that pharmacists are crucial to the safe use of medicines and investing in pharmacists, investing in stronger health systems, well, the need of the hour. Listeners, now let's take you way back in time. In the year 1493, Christopher Columbus left Spain on his second voyage to the New World. Now, in the year 1513, the Spanish explorer Vasco Nunez de Balboa, he became the first European to sight the Pacific Ocean.
जी, श्रोताओं, 1639 में अमेरिका में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत अभी आज के दिन ही की गई थी। और 1981 में मध्य अमेरिकी देश बेलीज संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ।
In we are taking them again a little back.
जी, जी.
In 1777, Philadelphia, then the American capital, it was occupied by British forces during the American Revolution. In 1799, André Massena, French nobleman and general under Napoleon, defeated Russian forces in the Second Battle of Zurich. 1928 now, Chicago's new Galvin Manufacturing Corporation, it was officially incorporated. And then in 1962, Sonny Liston became world heavyweight boxing champion with the first round knockout of Floyd Patterson. This happened in Chicago. And now, in 1992, NASA, it launched the Mars Observer spacecraft from Cape Canaveral in Florida with the goal of studying Mars' surface, also the atmosphere and magnetic field.
1999 में आठवें सैप खेलों का आयोजन काठमांडू में किया गया था और 2008 में चीन ने अंतरिक्ष यान शेंझो 7 का प्रक्षेपण भी किया। 2009 में भारतीय प्रवर्तन निदेशालय ने लगभग 5000 करोड़ रुपए के हवाला नेटवर्क का भी भंडाफोड़ किया था।
And in 2020, the National Medical Commission, it was officially constituted and it also came into effect, replacing the Medical Council of India.
जी। और अब बात उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। सबसे पहले बात करते हैं रुक्माबाई राउत के बारे में। आज उनकी पुण्यतिथि है। वे भारत की प्रथम महिला चिकित्सक के रूप में जानी जाती हैं। रुक्माबाई डॉक्टर बनकर जनसेवा करना चाहती थीं। उनके इस फैसले को घरवालों और लोगों का समर्थन मिला। इसके बाद वे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन में गईं। वहां से रुक्माबाई ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1895 में भारत वापस लौटी। रुक्माबाई ने सूरत के महिला अस्पताल से डॉक्टरी की शुरुआत की और जीवन भर चिकित्सा के माध्यम से जनसेवा की। हिंदू लेडी के नाम से मशहूर हुई रुक्माबाई ने अखबारों में भी कई पत्र लिखे। रुक्माबाई की कहानी को उपन्यास और फिल्मों में शामिल किया गया है। उनके जीवन पर आधारित मराठी फिल्म डॉक्टर रुक्माबाई है, जिसमें तनिष्ठा चटर्जी ने उनके किरदार को बखूबी निभाया। ये फिल्म वर्ष 2016 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा श्रोताओं, आज पुण्यतिथि है साहित्य सेवी, दार्शनिक और सिद्ध संत सुदर्शन सिंह चक्र की। जहां एक और उन्होंने कल्याण पत्रिका के संपादक विभाग में अनेक वर्षों तक हनुमान प्रसाद पोद्दार के सानिध्य में रहकर धार्मिक पत्रकारिता के अनेक आदर्श स्थापित किए, वहीं धार्मिक आध्यात्मिक विषयों पर भी उन्होंने 80 से अधिक पुस्तकें लिखकर साहित्य की साधना की। युवावस्था में वर्ष 1929 में वे कोलकाता चले गए। अप्रैल 1930 में चंदौली में उन्होंने नमक आंदोलन के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस दौरान वे कई बार जेल भी गए। काशी में वे संत महात्माओं के संपर्क में आए तथा अपना जीवन धर्म और भारतीय संस्कृति की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने 1931 से 1941 तक धार्मिक मासिक संकीर्तन तथा कई वर्षों तक मानस मणि और श्री कृष्ण संदेश पत्रिकाओं का संपादन किया। उन्होंने श्री रामचरित, श्री शिवचरित, श्री कृष्णचरित और श्री हनुमानचरित जैसे ग्रंथ लिखे।
लिसनर्स, टुडे वी आर आल्सो रिमेंबरिंग विलियम फॉकनर, वेल द राइटर बेस्ट नोन फॉर हिज नॉवेल्स एंड आल्सो हिज शॉर्ट स्टोरीज। वेल, दे वर सेट मेनली इन द फिक्शनल काउंटी व्हिच वाज सेट अप इन मिसिसिपी, व्हिच इज अ स्टैंड इन फॉर काउंटी वेयर ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ। Well, Faulkner is one of the most celebrated writers and often considered the greatest writer of Southern literature and also regarded as one of the most influential and important writers of the 20th century. So, he also worked as a screenwriter and also contributed to Howard Hawks' To Have and Have Not and also The Big Sleep, which was adapted from Raymond Chandler's novel. Also, Faulkner's reputation grew following the publication of Malcolm Cowley's The Portable Faulkner, and he was awarded the 1949 Nobel Prize in Literature for his powerful and unique contribution to the modern American novel.
जी, आज पुण्यतिथि है भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध पार्श्व गायकों में से एक एसपी बाला सुब्रमण्यम की। उनका पूरा नाम श्रीपति पंडित राधेल बाला सुब्रमण्यम था। एक प्लेबैक सिंगर होने के साथ साथ वे एक अभिनेता, संगीत निर्देशक, गायक और फिल्म निर्माता भी थे। एसपी बाला कृष्ण सुब्रमण्यम ने 6 बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायकी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 25 बार तेलुगु सिनेमा में नंदी पुरस्कार जीता। जब वे अभिनेता सलमान खान नए नए फिल्मों में नजर आए तो कई सालों तक एसपी बाला सुब्रमण्यम को उनकी आवाज के रूप में पहचाना गया।
Yes, I remember that.
जी, फिल्म मैंने प्यार किया के गाने हो या साजन
जी
या फिर हम आपके हैं कौन, इन सब फिल्मों में सलमान खान को एसपी बाला सुब्रमण्यम ने ही आवाज दी।
माने ना दिल दीवाना बिन सजना के, माने ना
श्रोताओं, एक दूजे के लिए साजन, पत्थर के फूल, हम आपके हैं कौन और रोजा उनकी प्रमुख फिल्मों में से एक हैं। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।
धक धक बोले इत उत डोले दिन रहना.
Such a beautiful song and brings back so many memories also. Listeners, today we are also remembering John Henry Bonham, the musician who was the drummer of the rock band Led Zeppelin, well noted for his speed, also power and fast single-footed kick drumming, which is a distinctive sound and feel for the groove. He is regarded as one of the greatest drummers, well, in the history, and he showcased a hard-hitting hard rock style, but also handled funk and also Latin-influenced grooves. In later Led Zeppelin releases, I have a very famous Led Zeppelin song. This is Stairway to Heaven.
When she gets there, she knows if the stores are all closed. With a word, she can get what she came for.
It is interesting to note here that he was mostly a self-taught drummer.
श्रोताओं, अब कार्यक्रम में बात करते हैं जिन महानुभावों की आज जयंती या जन्मदिन है उनके बारे में. तो श्रोताओं, आज जयंती है भारतीय जनसंघ के नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की. वे एक प्रखर विचारक, उत्कृष्ट संगठनकर्ता और एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जीवन पर्यंत अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा को महत्व दिया. वे भारतीय जनता पार्टी के लिए वैचारिक मार्गदर्शन और नैतिक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं. पंडित दीनदयाल उपाध्याय मजहब और संप्रदाय के आधार पर भारतीय संस्कृति का विभाजन करने वालों को देश के विभाजन का जिम्मेदार मानते थे. वे हिंदू राष्ट्रवादी तो थे ही, इसके साथ साथ वे भारतीय राजनीति के पुरोधा भी थे. दीनदयाल की मान्यता थी कि हिंदू कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, बल्कि भारत की राष्ट्रीय संस्कृति है. दीनदयाल उपाध्याय की पुस्तक एकात्म मानवतावाद है, जिसमें साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों की समालोचना की गई है. राष्ट्रधर्म, पांचजन्य, स्वदेश भी उनकी रचनाएं हैं. गरीबों और जरूरतमंदों के कल्याण के लिए पंडित दीनदयाल के योगदान को रेखांकित करने के लिए देश भर में उनकी जयंती को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है.
Yes, listeners, दीनदयाल उपाध्याय, we are talking about दीनदयाल उपाध्याय, the man of simple living, high thinking and strong determination. Well, and to honor his birth anniversary, well, in 2014, Government of India decided to celebrate the day with the spirit of reaching out to the last person, and it was the same day when the Ministry of Rural Development revamped its existing skill development program called Ajivika Skills as दीनदयाल उपाध्याय Grameen Kaushalya Yojana. This emphasized on greater access, coverage and quality.
आज जयंती है हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता निर्देशक फिरोज खान की. वे अपनी खास शैली, अलग अंदाज और किरदारों के लिए प्रख्यात रहे. फिल्मों में कभी वो हीरो की भूमिका में तो कभी खूंखार विलेन के रोल में नजर आए. फिरोज खान ने अपने करियर की शुरुआत 1960 में बनी फिल्म दीदी से की थी. शुरुआती कुछ फिल्मों में अभिनेता का किरदार निभाने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए खलनायक की भूमिका अदा की.
मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे हम तुम्हें चाहते.
ये था उनकी प्रख्यात फिल्म कुर्बानी से गीत.
लिसनर्स, टुडे we are also remembering Satish Dhawan, well, the mathematician and also an aerospace engineer, well, Professor Satish Dhawan, the Indian rocket scientist, well, considered by Indian scientific community to be the father of experimental fluid dynamics research in India and one of the most eminent researchers in the field of turbulence and also boundary layers.
जी, श्रोताओं, आज अभिनेत्री दिव्या दत्ता का भी जन्मदिन है. उन्होंने बॉलीवुड सिनेमा के साथ साथ मलयालम और अंग्रेजी फिल्मों में काम किया. एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर ओटीटी पुरस्कार सहित उन्होंने कई पुरस्कार जीते. ये है उनकी फिल्म वीर जारा जो काफी प्रसिद्ध रही, उससे गीत.
आया तेरा दीवाना,
आया तेरे दर पर दीवाना.
श्रोताओं, आज सवेरे के इस अंक में बस इतना ही. अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर.
थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन.
नमस्कार.